तारीख 13 सितंबर दिन रविवार, दिन भर के साथ मैं समीर आत्मज मिश्रा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार को हुए विस्फोट के बाद पूरे इलाके में शोक। मुख्यमंत्री पर फूटा लोगों का गुस्सा, सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। यूरोप में गहराया शरणार्थी संकट, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने भी खड़े किए हाथ।
Es ist nach wie vor so, dass wir tatsächlich nur über Nordrhein-Westfalen hier
1965 के भारत पाक युद्ध पर विशेष श्रृंखला की 13वीं कड़ी में सुनेंगे भारतीय वायुसेना ने कैसे दिया पाकिस्तानी टैंकों को जवाब।
उसमें से एक गोली मुझे लगी, मेरे जहाज को तो लगी ही, लेकिन मेरे राइट शोल्डर पे छूते हुए और काफी बड़ा कट करते हुए जहाज के बाहर भी चलेगी आर पार।
होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावत कस्बे में शनिवार को हुए विस्फोट की जांच में पता चला है कि धमाका गैस सिलेंडर से नहीं बल्कि जिलेटिन से हुआ था। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 85 हो गई है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की मजिस्ट्रेट स्तर की जाँच के आदेश दिए हैं। आज झाबुआ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोगों ने घेर कर उनका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। अमेरिका के मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर ने 39 मैचों में लगातार जीत हासिल करने के रॉकी मार्सियानो के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 5 अलग अलग वजन की श्रेणी में विश्व खिताब जीतने वाले मेवेदर ने अमेरिका के आंद्रे बेर्तो को लास वेगस में मुक्केबाजी के एक मुकाबले में हराकर रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जब मेवेदर से पूछा गया कि क्या वे 50वें मैच के लिए रिंग में वापसी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब पैसे के लिए तो वो रिंग में नहीं उतरेंगे।
You get to a certain level to where you can't buy nothing anymore.
आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप कुछ भी खरीदने की स्थिति में होते हैं। आप रोल्स रॉयस की तरफ भी नहीं खींचते, किसी और चीज़ को खरीदने का कोई झुकाव नहीं होता, क्योंकि आपके पास सब कुछ होता है। मैंने खेल में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मेरे पास वक्त है कि मैं युवा खिलाड़ियों को मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़े और मैं इसमें मददगार बनना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ। ये थे फ्लॉयड मेवेदर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस के कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने कहा है कि करीब 100 प्रवासियों को ला रही एक नाव के पलट जाने से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। यह हादसा दक्षिण एशियन शहर सागर के फार्माकोनेसी द्वीप के पास हुआ। कुछ लोग तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब हुए और करीब 68 लोगों को बचाया गया है। जर्मनी के सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि म्यूनिक शहर में अब और प्रवासियों को लेने में दिक्कत होगी। शनिवार को करीब 13,000 लोग यहां पहुंचे थे। मेयर ने कहा है कि प्रवासियों के रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। वहीं एक पैसेंजर ट्रेन से प्रवासियों को म्यूनिक से बर्लिन ले जाने की बात कही गई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व तुर्की में सुरक्षा बलों ने कहा है कि कुर्दी लड़ाकों के हमलों में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। एक हमले में कुर्दी लड़ाकों ने पुलिस चौकी के पास कार से बम धमाका किया। सुरक्षा बलों का दावा है कि लड़ाकों का पीछा किया गया, जिसमें 5 लड़ाकों की मौत हो गई। वहीं दियार बकीर में एक जिले समेत दूसरे जिले में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। जुलाई से अब तक कुर्दी लड़ाकों के साथ युद्ध विराम टूटने के बाद से अब तक तुर्की के करीब 100 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां कल हुए विस्फोट के बाद पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। झाबुआ जिले के पेटलावत कस्बे में शनिवार को एक घर में विस्फोट हुआ था। 20,000 की आबादी वाले इस कस्बे में कई परिवारों ने घर को चलाने वाले मुखिया को ही खो दिया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 85 बताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच हादसे का मुख्य अभियुक्त जिन्हें बताया जा रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ितों का हाल जानने पेटलावत गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ताज़ा जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने झाबुआ गए स्थानीय पत्रकार शुरे नियाजी से बात की।
देखिए आज मुख्यमंत्री वहां पर एक तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि जो कल हादसा हुआ है उसके बाद वहां पर हमने देखा कि बहुत मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो वहां पर नारेबाजी भी काफी हुई, लोगों ने उन्हें घेर लिया था। और इस दौरान ज्यादा गुस्सा ये देखा गया कि प्रशासन के खिलाफ खासा गुस्सा देखा गया, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसे माना जा रहा है कि जो पूरे इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ कई शिकायतें जनसुनवाई में भी की गई थी और वैसे भी शिकायतें की गई थी, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उनका मानना है कि प्रशासन जो है अगर ये सही वक्त पर एक्शन ले लेता तो इतनी जाने नहीं जाती।
शुरा नियाजी जी, ये बताएं कि इसमें कुछ क्या गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने सरकार ने क्या एक्शन लिया है?
देखिए अभी तो सिर्फ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स किए गए हैं। मैंने जब ये बात कलेक्टर से भी पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी जो भी होगा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसी से पता लगेगा कि आखिर इसकी वजह क्या थी मेन, क्योंकि पहले लोगों में इस बात के लिए भी गुस्सा है कि सिलेंडर से ये हादसे की बात की जा रही थी, जबकि उनका कहना है कि कोई भी एक भी सिलेंडर वहां पर फटा नहीं है। लेकिन इसको पूरे मामले को डाइल्यूट करने के लिए प्रशासन ने ही ये जानबूझकर ऐसा कर रही थी कि सिलेंडर की जो बात है वो बार बार बताई जा रही थी मीडिया वालों को।
एक चीज और है कि ये बताया जा रहा है कि ये जिस व्यक्ति के ये डेटोनेटर होने की शिकायत है, जिनके घर में रखा हुआ था, उनके पास इसका लाइसेंस था, तो क्या है ये मामला, क्या है पूरा?
देखिए ये अभी तक जो हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पास लाइसेंस जरूर था लेकिन उस जगह का नहीं था, बल्कि 2 किलोमीटर दूर का था जहाँ पे वो गोडाउन है मेन, लेकिन क्योंकि वो बार बार वहां जाना और दूरी की वजह से वो सारे सामान को यहीं पर रखते थे, तो उनका मानना है कि यही वजह थी कि यहाँ पर जो मामला पेश आया है इस जगह पर।
जी, और बचाव और राहत के जो हादसे में लोग मारे गए, घायल हुए और जो नुकसान हुआ है, तो क्या किस तरह का राहत कार्य वहाँ पे चल रहा है और क्या स्थिति है उसकी?
देखिए आज मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए एक एक जो व्यक्ति हैं उनके लिए अनाउंस किए हैं, तो ये तो जो कंपनसेशन है वो मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद हम हॉस्पिटल्स में भी गए, झाबुआ के हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे देखा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा वो है, ख़राब है, जो एडमिट हैं कई लोग सीरियस भी हैं, और उनकी जो वहाँ पे एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं इन लोगों के बीच में, उनका कहना है कि कल तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया अलग था, वो काफ़ी आगे बढ़कर इनकी मदद कर रहे थे, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि ये जो लोग हैं ये बहुत गरीब लोग हैं, लेबरर क्लास है, तो इनकी देखरेख आज बिल्कुल भी नहीं हो रही थी।
तो ये थे स्थानीय पत्रकार शुरे नियाजी, जो झाबुआ जिले के पेटलावत कस्बे में गए थे, जहां शनिवार को एक घर में हुए विस्फोट में करीब 85 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के 27 में से 20 जिलों में धान की फसल सूखने लगी है। एक ओर मौसम की बेरुखी से किसान परेशान हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा है कि जिन बांधों में 50% से कम पानी है वहां से खेतों को पानी नहीं दिया जाएगा। सूखती फसलों के लिए पानी की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
देश के शीर्ष धान उत्पादक राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में इस साल बरसात के इस मौसम में सूखे ने दस्तक दे दी है। धान की फसल सूखने लगी है और कर्ज से परेशान किसान खेतों की हालत देखकर आत्महत्या करने लगे हैं। किसानों की मांग है कि राज्य के बांधों से उनके खेतों को पानी दिया जाए। पिछले पखवाड़े भर से किसान पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को पूरे राज्य में कांग्रेस पार्टी ने किसानों की इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। राज्य के बस्तर इलाके में कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी आज बसों के पहिए थमे रहे। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भी मुलाकात की। कांग्रेस के विधायक धनेन्द्र साहू का कहना है कि सरकार चाहे तो किसानों की फसलें बच सकती हैं।
अभी भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम किसानों के प्रति उनकी जो अधिकार की बातें, किसानों के साथ एग्रीमेंट है सरकार का, 2.5 लाख से ज्यादा किसानों का इस गंगरेल से एग्रीमेंट है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए हम लोग मंत्री जी के पास आए। जो अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं कि पानी नहीं है, 10 दिन चल सकता है, 15 दिन चल सकता है, बहुत झूठी बातें आज ये अधिकारी लोग कर रहे हैं।
हालांकि राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का दावा है कि धान की फसल को बचाने के लिए अधिकांश बांधों से पानी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
लगभग हर बांध से पानी छोड़ा गया है। अगर गंगरेल में भी ऐसी स्थिति होगी कि हम पानी छोड़ने की स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से हमने पानी छोड़ेंगे, किसानों की चिंता जायज है, धनेन्द्र साहू जी की चिंता जायज है और उन्होंने जिन बातों को मुझे कहा है निश्चित रूप से उन बातों को मैं कंफर्म करूंगा।
लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कहना है कि यह सूखे की नहीं अकाल की स्थिति है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि अपनी छवि को बचाने के लिए राज्य सरकार केंद्र से राहत की मांग नहीं कर रही है।
प्रदेश में भयावह अकाल की स्थिति है, संभवतः वैसा ही अकाल जैसा पुराने लोगों को याद होगा वर्ष 67 का अकाल, वर्ष 78-79 का अकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रही है सरकार, डर रही।
छत्तीसगढ़ में इस साल सूखा तय है, लेकिन अभी भी अगर बांधों से खेतों को पानी मिल जाए तो भी 60% फसल बचाई जा सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार अपने कागजी दावे से अलग धरातल पर कितना पानी पहुंचा पाती है। आलोक पुतुल, BBC, छत्तीसगढ़।
दिन भर आप सुन रहे हैं समीर आत्मज मिश्र से। कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर BBC की विशेष श्रृंखला का, लेकिन उससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूरोप में प्रवासियों की समस्या दिन पर दिन गहराती जा रही है। कल यूरोप के कई शहरों में प्रवासियों के समर्थन और विरोध में रैलियां निकाली गईं और प्रदर्शन किए गए। वहीं शुरू में प्रवासियों की मदद के लिए आगे आने वाले ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देशों ने भी अब प्रवासियों के प्रवाह के सामने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं। BBC संवाददाताओं की रिपोर्ट का सार सुना रही हैं प्रगति सक्सेना।
कल तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए नागरिकों ने नारे लगाए थे कि प्रवासियों को ऑस्ट्रिया में रहने की जगह दी जाए और प्रवासियों का ऑस्ट्रिया में स्वागत है। लेकिन आज ही पुलिस प्रवासियों के प्रवाह के सामने खुद को असहाय पा रही है। ऑस्ट्रिया की पुलिस का कहना है कि आज हंगरी की सीमा से करीब 500 प्रवासी हर घंटे सीमा पार कर ऑस्ट्रिया में दाखिल हो रहे हैं। बुडापेस्ट की सरकार का कहना है कि वो सर्बिया से लगी अपनी सीमा को जल्द ही सील कर देगी ताकि इस कथित गैर कानूनी आगमन पर रोक लगाई जा सके। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने सीधे तौर पर तो इस आगमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के बुर्गनलैंड की क्षेत्रीय पुलिस के प्रवक्ता हेलमुट मारबान ने आंकड़े बताए, उससे जाहिर होता है कि पुलिस और प्रशासन इतने सारे प्रवासियों से व्यवस्थित तौर पर निपट नहीं पाएगा।
Wir hatten den ganzen gestrigen Tag über so von 0 bis 24 Uhr circa 7
कल मध्यरात्रि से 7000 प्रवासी सीमा पार कर यहां आए हैं। हमने उनकी देखभाल की और उनके आगे जाने के लिए वाहनों का इंतजाम किया। अब हमें जानकारी मिली है कि हर घंटे यहां 500 प्रवासियों के पहुंचने की उम्मीद है। वे हंगरी के सीमांत रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और वहां से पैदल सीमा पार करेंगे।
उधर जर्मनी के शहर म्यूनिख में अधिकारियों का कहना है कि अब शहर के लिए और अधिक प्रवासियों को लेना मुश्किल होगा। कल म्यूनिख में कुल 13,000 लोग पहुंचे, अब उन्हें रखने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। म्यूनिख के मेयर डीटर राइटर ने प्रवासियों की जिम्मेदारी को साझा न करने के लिए जर्मनी के अन्य क्षेत्रों और शहरों की कड़ी निंदा की। मेयर डीटर राइटर:
Es ist nach wie vor so, dass wir tatsächlich nur über Nordrhein-Westfalen hier nennenswert.
हालत ये है कि अभी सिर्फ नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया क्षेत्र ही प्रवासियों की इतनी बड़ी संख्या को जगह दे रहा है और दूसरे शहर तो अभी तक सोचने और योजना बनाने में लगे हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि अब सोचने का वक्त खत्म हो गया है। हर राज्य सरकार और हर बड़े शहर के मेयर को अब ये स्वीकार करना ही होगा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस बड़ी चुनौती का सामना करना है। अभी तक सिर्फ म्यूनिख अकेले ही इस जिम्मेदारी को झेल रहा है।
उधर अमरीका और सऊदी अरब भी प्रवासियों को शरण देने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर अपने फैसले की घोषणा करेंगे। लेकिन अभी तक विश्व के समृद्ध देशों के रुख से तो यही जाहिर होता है, मानवीयता का राग अलापने वाले इन देशों को भी अंदाजा नहीं था कि प्रवासियों की समस्या इतना भयावह रूप धारण कर लेगी।
यानी यूरोप में प्रवासियों की समस्या दिन पर दिन गहराती जा रही है। उधर खबर आ रही है कि ग्रीस के कोस्ट गार्ड के मुताबिक एगियन सी में एक नौका के पलटने से एक बच्चे समेत कम से कम 28 लोग डूब गए हैं। कोस्ट गार्ड के मुताबिक नौका में 100 लोग सवार थे जब वो फार्माकोनिसी टापू के पास पलट गई। कुछ लोग तैरकर टापू तक पहुंच पाए जबकि 68 को कोस्ट गार्ड ने बचाया, लेकिन 28 लोगों के इस हादसे में डूबने की खबर है। और अब BBC की विशेष श्रृंखला की बात। 1965 के युद्ध में विंग कमांडर विश्नोई की टीम को पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो नीचे से आई एक गोली उनकी टीम के एक सदस्य सुरेश पारुलकर के कंधे में लगी। पारुलकर उसी हालत में न सिर्फ अपने विमान को सुरक्षित वापस लेकर आए बल्कि उसे सुरक्षित नीचे भी उतारा। कैसे, बता रहे हैं रेहान फजल 1965 युद्ध की 13वीं कड़ी में।
सौ फीट की ऊंचाई और 580 नॉट्स की रफ्तार से उड़ते हुए चार हंटर विमानों ने भारतीय सीमा पार की। बरकी के पास छोगिल नहर पार करते हुए वो 30 डिग्री बाएं मुड़े और कुछ ही मिनटों में रायविंड स्टेशन के उत्तर में पहुंच गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीके मेनन ने ऊपर से देखा कि उसी समय एक मालगाड़ी स्टेशन के यार्ड में घुस रही है। उस हमले में शामिल एयर मार्शल भूप बिश्नोई याद करते हैं।
हम लोगों ने टेक ऑफ किया, ये कोई दोपहर की बात है। जब आप ऐसे किसी मिशन पे जाते हैं तो सीधे उस टारगेट की तरफ आप नहीं जाते हैं, आप उनको डिसीव करने के लिए कुछ ऐसे रूट लेते हैं, किसी और तरफ पहले जाओ, फिर उसके बाद डायरेक्शन घुमा के कहीं और चले जाओ और फिर आखिर जाके उस एरिया में पहुंचो जहां के आपको जाना है। चारों हवाई जहाज़ बिल्कुल पास में नहीं थे, कोई पौन किलोमीटर की दूरी के ऊपर फैले हुए थे ताकि हम साथ में फ्लाई कर सकें, साथ में टारगेट को ढूंढ सकें और ये भी नहीं खतरा होगा एक दूसरे से टकराएं। जैसे हम थोड़ी दूर साउथ कोर्स के ऊपर फ्लाई करते गए तो मैनन ने एकदम से कहा कि देयर इज अ ट्रेन एट 10 o'clock। हमने ट्रेन के ऊपर से फ्लाई किया कि पता करें कि है क्या ट्रेन, इसके अंदर क्या है। तो जैसे हम उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर से फ्लाई किया, हमने देखा ट्रेन के अंदर टैंक्स लोडेड हैं, फ्यूल टैंक्स हैं जिसमें पेट्रोल है और बंद डब्बे हैं, शायद उसके अंदर एमुनेशन होगा। तो मैंने कहा ये दिस इज राइट टारगेट, विल अटैक। सबसे पहले मैनन थे, वो आगे थे और मैंने देखा जब उन्होंने रॉकेट फायर किए, उनका रॉकेट ट्रेन के इंजन के पीछे वाले डब्बों के जाके लगा, उनके अंदर शायद फ्यूल था। जैसे ही रॉकेट पहियों के पास नीचे लगे रेल के ऊपर पहियों के पास में, एकदम से ये डब्बे हवा में ऐसे उछले जैसे कि टॉयज के हों। उसके बाद मैंने देखा खुलों को फायर करते हुए, उसके रॉकेट सेंटर के पास लगे और जैसे वो रॉकेट नीचे लगा वो बोगीज उलट गई और एकदम से जैसे कहते हैं कि धुआंधार सा जैसे मिट्टी उड़ी और सारी जो ट्रेन आधी साइड ट्रेन कवर हो गई। अभी कुछ दिख नहीं पा रहा था ट्रेन का, सिर्फ राइट साइड के जो एंड थे वो दिख पा रहे थे। अब नेगी जो मुझसे आगे थे उन्होंने फायर किया ट्रेन के ऊपर, वो भी फ्यूल टैंक्स थे और जैसे ही फ्यूल टैंक्स के अंदर ये रॉकेट मैंने देखे लगते हुए वो भी बोगी हवा में उड़ी आग भगोला होके। अब मैं लास्ट था, जैसे ही मैं अपने टारगेट के पास पहुंच रहा था मेरा ध्यान एकदम से इधर उधर देखा कि सफ़ेद और काले से बॉल्स जैसे होते हैं वो फट रहे हैं मेरे चारों तरफ। तो मुझे पता नहीं लगा ये हो क्या रहा है, ये क्या है। और फिर मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है, मैंने कहा इडियट ये तो एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स हैं जो आपके चारों तरफ बस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक मैं फायरिंग रेंज के अंदर आ गया था तो मैंने टारगेट किया ट्रेन का राइट एंड जो है और उस पर फायर किया। मैंने रॉकेट जाते हुए देखे लेकिन रॉकेट ट्रेन को हिट करते हुए मैं नहीं देख सकता था क्योंकि अपने रॉकेट जब आप फायर करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद आपको जब फायर करते उस वक्त देखते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ जाते हैं तब तक हवाई जहाज़ उस टारगेट के ऊपर से गुजर चुका होता है। सो फायरिंग के बाद में मैंने हवाई जहाज़ को ऊपर को खींचा और लेफ्ट को टर्न किया देखने के लिए और अपनी बैक पे गया कि नीचे क्या है हुआ। देखा सब की सब ट्रेन एक एंड से दूसरे एंड तक चारों तरफ उसकी आग से लगी हुई थी। इवन द रेल्स जो रेलवे ट्रैक थे वो भी मुड़े तुड़े वहाँ से दिख रहे थे।
अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ था, आगे उड़ते हुए हंटर्स ने कसूर के पास एक हथियारबंद कॉलम को देखा, उन्होंने उस पर भी हमला बोला। मेनन और खुल्लर ने अपने रॉकेट से कुछ टैंक तबाह किए, बिश्नोई और नेगी के सभी रॉकेट्स खत्म हो चुके थे इसलिए उन्होंने नीचे चल रहे वाहनों पर कैनन से हमला किया। जब हंटर बेस पर वापस आए तो देखा गया कि उनमें नीचे से आई फायरिंग की वजह से कई छेद हो गए थे।
मेरे हवाई जहाज के अंदर मैंने देखा 5 होल्स से, उसमें से एक होल तो इतना बड़ा था कि आप उसके अंदर से हाथ भी डाल सकते थे। बट देन दिस इज व्हाट इज वॉर, इट इज नॉट ए गेम ऑफ पेबल्स कि आप कंचे खेल रहे हो। अगर हम उनको मारने के लिए गए तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए हमारे ऊपर भी हमला करेंगे।
अगले दिन यानी 9 सितंबर को 7 और 27 स्क्वाड्रन की मिली जुली टीम को बढ़ते हुए पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने का एक और लक्ष्य दिया गया। इस बार टीम के लीडर भूप बिश्नोई थे।
हमने हलवाड़ा से टेक ऑफ किया, टारगेट एरिया में पहुंचे और स्पॉट किया ये गन पोजीशन जहां पे थी। हमने गन पोजीशन के ऊपर रॉकेट अटैक किए, वहां भी एंटी एयरक्राफ्ट फायर बहुत हैवी था, तो हमने 3 अटैक किए उस पोजीशन के ऊपर टू न्यूट्रलाइज इट। और जब हमारे एम्युनिशन खत्म हो गया, हमने कोर्स सेट किया वापस आने के लिए हलवाड़ा। अभी कोई 1 या 2 मिनट ही हम टारगेट से निकले होंगे वापसी के लिए कि परुलकर ने कॉल किया रेडियो पर कि सर आई एम हिट, कि मेरा फ्यूल टैंक है उसमें भी हिट हो गया है, उसमें से फ्यूल लीक कर रहा है और ये एक बुलेट मेरे आर्म के अंदर भी लगा है, लेफ्ट आर्म पे, और बहुत ज़बरदस्त और ज़ोर से खून निकल रहा है उसमें से। तो मैंने उससे पूछा कि आप पोजिशन में हो हवाई जहाज को कंट्रोल करने की या नहीं, अगर नहीं तो इजेक्ट। परुलकर ने कहा नहीं सर, अभी तक तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन फ्यूल बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आगे हो जाओ, हम आपके पीछे आ रहे हैं। तो मैंने थ्रॉटल बैक किया अपने एयरक्राफ्ट को और मैं परुलकर को जो कि मेरी बाईं तरफ था उसके पीछे हो गया। मैंने देखा उसके फ्यूल टैंक से स्ट्रीम ऑफ फ्यूल इज कमिंग आउट। 3 और 4 जो थे हमारे नंबर 3 और 4 वो मेरे राइट में थे, काफ़ी दूर थे। तो मैंने परुलकर से फिर पूछा कुछ 4-5 मिनट के बाद में कि कैसे हो, तो कहने लगा साहब मेरा हाथ जो बिल्कुल नम हो रहा है। पायलट जब फ्लाई करता है तो लेफ्ट आर्म से इंजन की पावर को कंट्रोल करता है, जिसको थ्रॉटल बोलते हैं या एक्सेलेटर आप कार के अंदर होता है। अगर हाथ नहीं चलेगा तो आप पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना आप स्लो कर सकते हैं ना उसको एरोप्लेन को तेज कर सकते हैं।
उधर पारुलकर पर क्या बीत रही थी ये जानने के लिए मैंने पुणे फोन कर उनसे संपर्क किया।
वो पाकिस्तानी जो पैटर्न टैंक थी उसके ऊपर एक गन होती है उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें से उन लोग बहुत रैपिड फायर कर सकते हैं और उसमें से एक गोली मुझे लगी, मेरे जहाज को तो लगी ही लेकिन मेरे राइट शोल्डर पे छूते हुए और काफी बड़ा कट करते हुए जहाज के बाहर भी चलेगी, आर पार कैनोपी से बाहर चलेगी। मैं थोड़ी देर चुप ही रहा क्योंकि तुरंत समझ तो गया था कि मुझे गोली लगी है क्योंकि खून भी बहने लगा, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं अलार्म क्रिएट करता हूँ, हमारे मुंह के ऊपर एक मास्क होता है उसके अंदर माइक्रोफोन होता है, हेलमेट के अंदर ईयरफोन्स होते हैं, सो हम लोग जब फ्लाइंग करते हैं एक दूसरे के साथ और जमीन के साथ भी बात कर सकते हैं, लेकिन चुप ही रहा और 2-3 अटैक किए। जब हम लोग सब अटैक खत्म करके हलवाड़ा वापस जाने के लिए निकले तब मैंने अपने लीडर बिश्नोई साहब को ये बोला कि मुझे गोली लग गई है। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, काफी पैनिक हुआ, कहाँ लगी, क्या हो गया, कहाँ लगी। मैंने कहा मेरे दाहिने कंधे में गोली लगी है। हंटर जहाज में एक इजेक्शन सीट होती है जिससे पायलट को बहुत कम काम करना पड़ता है और वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब और कुछ भी चारा नहीं होता है उसी वक्त वो इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ पायलट अपने खुद को बचाने के लिए करता है और यही उसका मकसद उद्देश्य यही होता है कि पायलट बच जाए क्योंकि जहाज तो गिर जाता है। तो उन्होंने कहा इजेक्ट इजेक्ट, इसका मतलब आप इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करो और पैराशूट से जमीन पे उतरो। मैंने कहा मैं नहीं, मुझे नहीं इजेक्ट करना, मुझे वापस हलवाड़ा जाके लैंड करना है। तो उन्होंने अपने आप से सोचा बिश्नोई साहब ने कि शायद अभी हम पाकिस्तानी टेरिटरी में थे इसलिए ये झिझक रहा है इजेक्ट करने के लिए। 5 मिनट के बाद जब हम लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ गए तो उन्होंने फिर से मुझे पूछा दिलीप यू कैन इजेक्ट नाउ इजेक्ट। मैंने कहा नो सर आई एम नॉट गोइंग टू इजेक्ट, आई विल लैंड एट हलवाड़ा।
पारुलकर ने बिश्नोई को आश्वस्त किया कि वो जहाज को लैंड कर पाने में सफल होंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो एक हाथ से जहाज उड़ा तो सकते थे लेकिन लैंड करने के लिए उन्हें दोनों हाथों की जरूरत पड़ने वाली थी। तय हुआ कि पारुलकर सबसे आखिर में लैंड करेंगे ताकि अगर लैंडिंग फेल हो जाए तो उसकी वजह से रनवे ब्लॉक ना हो जाए। तभी एक और दुर्घटना हुई। लैंड करने की कोशिश करते हुए शर्मा का जहाज आहूजा के जहाज के विंग से टकराया। आहूजा का विमान अचानक नियंत्रण से बाहर हुआ और एयरबेस की बाउंड्री के नजदीक जमीन से टकराया और आग के गोले में बदल गया।
मैं तो था परुलकर के साथ में, ये दूसरे नंबर 3 और 4 वो हमसे कम से कम 0.5 किलोमीटर पीछे थे। जब उन्होंने एयरफील्ड के आके टर्न किया, किसी वजह से हम नहीं पता कर पाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, लेकिन आहूजा का जो एयरक्राफ्ट है उसने शर्मा का एयरक्राफ्ट जो उसके आगे था उसको हिट किया। शर्मा की जो रॉकेट रेल्स थी जिसके रॉकेट होते हैं वो आहूजा के विंग के ऊपर चिपके हुए थे जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, तो आहूजा का जो एयरक्राफ्ट था हिट करने के बाद में उसके आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और हिट द ग्राउंड। and Ahuja got killed in that. Sharma aram se bache, lekin Ahuja was badly damaged. It had to be repaired.
Beharhal, Bishnoi ne sabse pehle land kiya. Uske baad Sharma ne apne buri tarah se kshatigrast Hunter ko land karaya. Ab Dilip Parulkar ke land karne ki bari thi.
तब तक काफी खून बह चुका था, जरा सा मुझे वो भी महसूस हो रहा था कि कहीं मैं फेंट ना हो जाऊं वगैरह वगैरह, बट मैंने उतारा जहाज। दो बार चक्कर लगाना पड़ा, दूसरी बार मैं उतार सका। जहां पे हमारी पार्किंग एरिया थी वहां पे पहुंचा। तब तक ऑफ कोर्स बिश्नोई साहब ने फ्लाइंग कंट्रोल यानी जो हमारा हलवारा का कंट्रोलर था उसको बता दिया था कि पायलट को गोली लगी है। तो एम्बुलेंस भी आई वहां पे आवाज करते हुए, मुझे हॉस्पिटल ले गए।
बाद में पता चला कि नीचे से आई गोली उनके ड्रॉग पैराशूट और मुख्य पैराशूट को जोड़ने वाली लाइन को भेद गई थी। कहने का मतलब ये कि अगर पारुलकर ने अपने बुरी तरह से घायल हो चुके हाथ से इजेक्ट का बटन दबाया भी होता तो उनका पैराशूट नहीं खुलता और वो एक भारी पत्थर की तरह जमीन से जा टकराते। पारुलकर ने जब लैंड किया तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनके पास पैराशूट से कूदने का विकल्प समाप्त हो चुका था। बिश्नोई याद करते हैं,
जब पारुलकर वहां पे लैंड किए वो टर्न नहीं कर पा रहे थे हवाई जहाज को आफ्टर लैंडिंग रनवे से हटाने के लिए। उन्होंने हवाई जहाज वहीं खड़ा करके स्विच ऑफ कर दिया। इतने हमारी एम्बुलेंस और लोग गए, उन्होंने देखा कि सारा उनका लेफ्ट साइड ओवरऑल खून से भरा हुआ है, हवाई जहाज के अंदर भी खून गिरा हुआ है। उन्होंने कॉकपिट खोला और पारुलकर वॉज हाफ अनकॉन्शियस जब उन्होंने उसको हवाई जहाज से निकाला।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप इस कड़ी को कल सुबह विश्व भारती कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं और कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें जरूर लिखिएगा। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं खेल की तमाम खबरों को लिए हुए। जी आदेश जी।
जी सबीर, अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के बीच खेला जाएगा। लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, इसका सटीक उदाहरण पेश किया इटली की 24वीं वरीयता हासिल फ्लाविया पेनेटा ने, जिन्होंने महिला एकल वर्ग के फाइनल में अपनी ही हमवतन इटली की रॉबर्टा विंची को 7-6, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पेनेटा ने 33 साल की उम्र में 93 मिनट में फाइनल अपने नाम किया। ये उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। विजेता ट्रॉफी हासिल करते समय इससे पहले के दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कुछ समझ पाते, उन्होंने टेनिस की दुनिया को अलविदा कह दिया। एक खिलाड़ी की कामयाबी की सबसे बड़ी सुबह उनकी शाम बन गई। इससे पहले इटली की फ्रांसिस्का शियावोन ने साल 2010 में फ्रेंच ओपन जीता था, जो इटली के किसी भी खिलाड़ी की पहली सबसे बड़ी कामयाबी थी। आज का फाइनल मुकाबला देखने वालों में इटली के प्रधानमंत्री मातेओ रेंची भी शामिल थे। उधर आज मिश्रित युगल में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस मिश्रित युगल में उतरेंगी। उधर अमेरिका के लास वेगास शहर में समाप्त हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का अभियान एक कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। भारत के नरसिंह यादव ने पुरुषों के 74 किलोग्राम भार वर्ग के फ्रीस्टाइल मुकाबले में कांस्य पदक जीता। और चलते चलते संक्षिप्त में बता दें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पांचों और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए केवल 139 रनों का लक्ष्य और थोड़ी देर पहले 21 ओवर की समाप्ति के बाद उसका स्कोर 2 विकेट खोकर 111 रन था।
जी आदेश कुमार गुप्त, धन्यवाद खेल की खबरों के लिए। और अब चलते चलते एक नज़र प्रमुख समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावत कस्बे में शनिवार को हुए विस्फोट की मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का आदेश दिया गया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 85 हो गई है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। ग्रीस के कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने कहा है कि करीब 100 प्रवासियों को ला रही एक नाव के पलट जाने से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। दक्षिण पूर्व तुर्की में सुरक्षा बलों ने कहा है कि कुर्द लड़ाकों के हमलों में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। एक हमले में कुर्द लड़ाकों ने पुलिस चौकी के पास कार से बम धमाका किया। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 9:30 कार्यक्रम घटना चक्र में तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी के साथ समीर आत्मज मिश्र को फिलहाल दें अनुमति। नमस्कार।